समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जन्मदिन या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन।
Hello Akarshita, hello and a very good afternoon to all the listeners. Welcome along to Parikrama on 100.1 FM. I'm Shagun Chopra and with me today is Akarshita. And today there's a lot that we're going to unpack. We have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, businesses, tributes. And today we will be weaving a legacy of tradition, the operative word being weaving. And all of this will come to you in the next 30 minutes, so make sure to stick around till the end. All of this and much more, and we begin with the headlines first. President Draupadi Murmu reaches Auckland on a 3-day state visit to New Zealand.
सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ले जाने की योजना।
CBI takes over probe into deaths of 3 IAS aspirants in flooded basement of a coaching center in Delhi.
बांग्लादेश में सेना के शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल, नए अधिकारियों ने देश के पुलिस बल का पुनर्गठन किया।
IMD forecast widespread rainfall over Himachal Pradesh and Uttarakhand during next 4 days.
दिग्गज भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का वजन कुछ ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें पेरिस ओलंपिक के अयोग्य घोषित किया गया।
And now it's time for our segment Dateline India, and we'll be taking a look at the developments taking place at the national or global level. Today we will be talking about the Handloom Day, the National Handloom Day. This is celebrated on August 7 every year in India. This day recognizes and honors the contribution of handloom weavers to the nation's economy and culture. India's handloom sector has a long history of cultural development. It has been passed down from generation to generation, whether they are intricate designs or traditional patterns and prints. This day also marks India's reaffirmation of protecting its glorious handloom heritage and empowering weavers and workers with greater opportunities to ensure their regular livelihoods also.
स्वदेशी से स्वाभिमान की भावना को सहेजे हुए भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को अपने कार्य एवं कारीगरी से जीवंत रखने वाले हथकरघा उद्योग के सभी बुनकरों एवं व्यवसायी भाई बहनों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर शुभकामनाएं। हरियाली तीज के अलावा आज भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जा रहा है। कृषि के बाद हथकरघा भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हथकरघा कारीगर कपास, रेशम और ऊन द्वारा खूबसूरत साड़ियां और दूसरी चीजें तैयार करते हैं। भारत में हथकरघा आजीविका का प्रमुख स्रोत है। ये दिन हथकरघा समुदाय और आर्थिक विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और शगुन, आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी ये हथकरघा दिवस की?
Right, we want to know about that.
इसका संबंध हमारी आजादी से है। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की याद में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत साल 1905 में हुई थी और इसका मकसद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। इस आंदोलन के चलते भारत के लगभग हर घर में खादी बनाने की शुरुआत हुई थी। हथकरघा उद्योग आज से नहीं बल्कि काफी वक्त से हाथ के कारीगरों को रोजगार प्रदान करते आया है, लेकिन फिर भी इन कारीगरों की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। 7 अगस्त 2015 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था हथकरघा दिवस और तब से हर साल इस दिन को मनाया जा रहा है। 7 अगस्त 2024 को 10वां हैंडलूम डे मनाया जा रहा है।
वेल, डेल्विंग मोर इनटू द हिस्ट्री ऑफ दिस डे, National Handloom Day was introduced to continue this legacy, recognizing the vital role of weavers in preserving India's traditional weaving techniques and promoting sustainable practices. The day is an occasion to celebrate the craft skills and cultural significance of handloom textiles. And this also focuses on improving the economic conditions and welfare of weavers across the country, which is really very important. National Handloom Day also promotes pride in India's textile traditions and supports innovation by blending traditional weaving techniques with modern designs. As the times have changed, traditional patterns, they are getting incorporated. They are incorporated with modern designs and modern patterns as per the time. It celebrates the country's rich handloom heritage and calls for more recognition and support for the handloom industry. India's handloom industry employs 35 lakh people directly or indirectly, making it the second largest employer in the nation after agriculture. Really important. There are exquisite variations of handloom weaving in every region. Depending upon various regions, they change the patterns and the designs. And this craft is associated with traditional values. Customers from all over the world are drawn to the distinctive weaves, designs and traditional motifs of items like Banarasi, Madhubani, Kosa, Ikat, Patola, Tusar Silk, Maheshwari, see the names, Fulkari, Lahiria, Khandua and Tangalia, to mention a few.
विविध रंगों, आंखों को सुकून देने वाली डिजाइनें, चमचमाती रूपों और शानदार ताना-बाना और उनकी खूबसूरत बनावट इन कपड़ों में एक विशिष्ट आकर्षण पैदा कर देती है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र से लेकर कश्मीर और दक्षिणवर्ती हिस्से तक इन कपड़ों की विशिष्टताएं एक अनूठी और मोहक आकर्षण जगाती हैं। सदियों से हथकरघा का संबंध कपड़ों से जुड़ी उत्कृष्ट भारतीय कारीगरी और लगभग प्रत्येक राज्य में लाखों हथकरघा कारीगरों को रोजगार का स्रोत उपलब्ध कराने से जोड़ा जाता रहा है। तेजी से आ रहे बदलावों के बावजूद कला एवं करघा परंपराएं कलाकारों और शिल्पकारों की कई पीढ़ियों के सतत प्रयासों के कारण अब तक जीवित रही हैं, जिन्होंने अपने सपनों एवं विजन को उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों में पिरोया और अपने कौशलों को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक रूपांतरित किया। प्राचीन काल से ही भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहचान उनकी दोष रहित गुणवत्ता से की जाती रही है। इनमें चंदेरी का मलमल, वाराणसी का शिल्क के बेल, बूटेदार वस्त्र, राजस्थान एवं उड़ीसा के बंदेज की रंगाई, मछलीपट्टनम के छींटेदार कपड़े, हैदराबाद के हिमरूज, पंजाब के खेस, फरुखाबाद के प्रिंट, असम एवं मणिपुर के फेनेक तथा टोंगम तथा बॉटल डिजाइन, मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ियां और वडोदरा की पटोला साड़ियां शामिल हैं। और शगुन देख सकते हैं हम कि पूरे नॉर्थ टू साउथ जितने राज्य हैं उनकी अलग अलग जो है कलाएं हैं हथकरघा की और अलग अलग तरीके के उनके डिजाइन हैं और अलग अलग
फ्रॉम रीजन टू रीजन स्टेट टू स्टेट।
हाँ, और ये जो चीजें हैं ये सिर्फ भारत जैसे विविधता वाले राष्ट्र में ही संभव है कि जितने राज्य हैं उनकी अलग अलग कलाएं हैं और वो उन कलाओं का एक अनूठा रूप है। और इसके अतिरिक्त कांचीपुरम एवं बनारस सिल्क, छत्तीसगढ़ एवं असम के कोसा एवं मोगा सिल्क, बंगाल की जामधानी, भागलपुर सिल्क, मध्य प्रदेश की चंदेरी और उड़ीसा के टसर और इकाट जैसे इन विशिष्ट हथकरघा उत्पादों के निर्माण में शामिल कौशल देश की विशेष सांस्कृतिक पूंजी का हिस्सा है।
ऑल्सो व्हाट्स योर फेवरेट अमंग दीज वेरियस
सिल्क? बनारसी सिल्क मेरा वो सबसे फेवरेट है क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हम देखते आए, कभी भी हमारे यहाँ कोई तीज त्यौहार या ऐसे महोत्सव पड़ रहे हैं, उत्सव पड़ रहे हैं, शादियों का मौसम है या कुछ भी है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो दादी हैं, माँ हैं या घर के अन्य लोग हैं वो जो है।
ऑल्सो टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल फेवरेट और माय चॉइस ऑफ पीस, इट्स चिकन करी। आई रियली लव दैट, इट्स रियली
लखनऊ की है वो
I really love this particular design and pattern in chikankari which are available.
तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमारे पास तीज त्योहारों से लेकर हर मौसम, हर बदलते मौसम के लिए एक खास परिधान है जिसको हम पहनते हैं और हम भारतीय इस पे बहुत गर्व करते हैं, है ना शगुन?
Right. And it's important to highlight that the handloom sector plays a crucial role in women empowerment also, as over 70% of handloom weavers and allied workers are women. This day holds great significance in creating awareness about the rich history of Indian handloom, as synthetic fibers have taken over the modern textile industry. So we should really appreciate our Indian handloom. The handloom industry is a representation of the nation's illustrious cultural legacy, and this occasion celebrates the rich fabrics and colorful weaves made by weavers. Now, there's one update which I'm going to tell our listeners about.
और उससे पहले आपको बता दें श्रोताओं की हथकरघा उत्पादों की कई विशेषताएं हैं जो मशीन से बने कपड़ों से अलग करती हैं उन्हें. ये उत्पाद अधिक टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं. हथकरघा उत्पादों में विभिन्न प्रकार के डिजाइन और रंग होते हैं जो उन्होंने अद्वितीय बनाते हैं. जैसा कि हम देख सकते हैं आजकल हम लोग बहुत ढेर सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल है. तो इसके तहत हम अपने देश में बने जो हाथ के कारीगर हैं, खुद से बना रहे हैं, उनकी चीजें को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनकी चीजें खरीद सकते हैं. हाँ, right. और उनको यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा ऑर्गेनिक है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो हमें चाहिए अभी right. वक्त की जरूरत है.
विच एड्स टू द बेनिफिट ऑल्सो, देयर इज गोना गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑल्सो फ्रॉम दैट इफ यू बाय दैट.
जी, और आज देश में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के कारीगरों के प्रयासों की सराहना की और वोकल फॉर लोकल होने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
Also, Vice President Jagdeep Dhankar today asserted that India will become the third largest economy in the world within 2 years. He said the country has reached the fifth spot in the global economy. He was speaking at the 10th International Handloom Day event organized in New Delhi today. And he also said that the nation is on rise and this rise is unstoppable. Advocating economic nationalism, Mr. Dhankar said it is fundamental to a country's economic growth. He also said economic nationalism will help in saving foreign exchange and generating employment, entrepreneurship opportunities in the country. He presented Sant Kabir Awards and National Handloom Awards to the handloom weavers for their outstanding contribution in the handloom sector.
और समय है अब अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. हथकरघा खादी एक पारंपरिक भारतीय परिधान है जिसे सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है. हाथ से चलने वाला करघा प्रतीक धागा कुशल कलाकारों द्वारा बुना जाता है जिससे प्रतीक टुकड़ा कला का एक अनूठा कार्य बन जाता है. ऐसी ही हथकरघा खादी के बीच आज बात करते हैं पोंडुरू के आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से खादी से निर्मित इस कला की.
It feels cool in the summer and warm in the winter. This is the specialty of Pondur Khadi cloths. These cloths are very elegant and comfortable to wear. From the most common to the most extravagant, the garments are available. Saris, shirts, lungis, towels and handkerchiefs are available in Khadi. Let's look at the process of how they made up of these Pondur Khadi into nice garments. First, they bought cotton and used some special tools to make fine pure yarns. In this, cotton is united with the fish jaw tool and cleaned at various stages before reaching the loom. And this method is called nool count. They made these saris of pondur with pure yarns with their own hands. Acharya Vinobha Bhave laid the foundation stone of the Ponduru Chenetha Sangha Bhavan in 1955, which has now become the Andhra Fine Khadi Labour Development Association. Around 26 villages are living in this area. Among them, 200 weavers and 1500 spinners are working. Most of them are women. If you go to any house in these villages and you will see women cleaning cotton with delicate hands. In this region, there were a people who still practices the principles of Gandhiji. In 2013, there was a person who presented Pondur yarn to Prime Minister Narendra Modi on the occasion of Independence Day celebrations. From Mahatma Gandhi to the current political leaders, all are very great fans of Pondur Khadi. You too will love these cloths once you wear them. And this is Satya Narayana for Parikrama from Vishakhapatnam.
The Nagarjuna Sagar Sri Silam Tiger Reserve, nestled in the expansive Nalamala Forest, stands as one of India's prime examples of successful tiger conservation. Recently, the Prime Minister highlighted the significant conservation efforts undertaken in these forests during his Mann Ki Baat program, underscoring the reserve's critical role in India's wildlife preservation initiatives. We have more on this from our correspondent.
Nestled in the verdant hill ranges of Nalamalas, an offshoot of eastern ghats of Andhra Pradesh, the Nagarjuna Sagar Sri Silam Tiger Reserve is hilly terrain with plateaus, ridges, gorges and deep valleys which support tropical mixed dry deciduous forests. The tiger reserve is spread over an area of 5,937 square kilometers in Nandyala, Prakasam, Palnadu, Nalgonda and Mehboob Nagar districts. This tiger reserve is an adobe of rich biodiversity with many endangered flora and fauna. This tiger reserve was declared officially in the year 1978 and has been recognized by the Project Tiger in the year 1983. Top faunal species include tiger, leopard, wolf, wild dog and jackal. Other than these, many other mammals, reptiles, birds and numerous other forms of species are found in the reserve. The river Krishna traverses through this reserve for a linear distance of around 270 kilometers. The management effectiveness evaluation of the Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve has improved from good to very good. The tiger estimate of the reserve ranges from 53 to 67. In the recent edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi has made special mention about tiger conservation being done in Nalamala Forest. Sai Sishla for Parikrama from Akashvani News, Vijayawada.
किताब प्रेमियों के लिए एक खास खबर, राजधानी के भारत मंडपम में आज से दिल्ली पुस्तक मेले का 28वां संस्करण शुरू हो गया है। इसका आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ द्वारा किया जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का विषय भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव है। दिल्ली पुस्तक मेले में इस वर्ष 90 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और इसमें स्टेशनरी मेला और ऑफिस ऑटोमेशन तथा कॉरपोरेट गिफ्ट मेला भी मुख्य आकर्षणों का केन्द्र है। मेले में पुस्तकों, पत्रिकाओं, शिक्षण सामग्री के अलावा पठन पाठन के आकर्षक उपहार बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।
Now we'll take you to Pune. A new species of flowers found on the historical Vishalgarh in western Maharashtra is named after the great Maratha king Chhatrapati Shivaji Maharaj. It's a tribute to the great king who was equally alert about the environment of his fort like the well-being of his people. We have a report from our Pune correspondent.
The new species of the flowers from Seropegia group has been named as Seropegia chivraina. A research paper on this find has been published in International Journal Phytotaxa. Akshay Jangam and Dr. Nilesh Pawar from the New College, Kolhapur have been working on this species since last 6 years. The flora found on the fort situated in Kolhapur district is particular subject of their research. It was in August 2023 when they stumbled upon the new plant which was not recorded earlier. An expert of these types of plants, Dr. Sharad Kamre, opined that this may be a new species of Seropegia. Later, a botanist from Shivaji University, Kolhapur, Professor S.R. Yadav, confirmed the findings and a research paper was subsequently published. Naming the new plant after the great king Chhatrapati Shivaji Maharaj was significant on the basis that he was very keen about taking care of the flora and fauna of his kingdom, especially surrounding the forts he held. Chhatrapati Shivaji even gave standing instructions to his men not to allow cutting of a single tree in the area under their command. The environment of Western Ghats is very fragile and needs very minute attention in order to maintain the eco-balance. Finding of new species in this area only underlines the vision we need to adopt in this regard. For Parikrama, Manoj Kshirsagar, Pune.
Now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
The first Indian flag against the imperialist British administration was hoisted on the 7th of August 1906 in Kolkata. This flag had 3 horizontal stripes of red, yellow and green with Vande Mataram written in the middle. The red strip on the flag had a sun and a crescent moon and the green strip had 8 half-open lotuses. It is believed to have been designed by freedom fighters Sachindra Prasad Bose and Hemchandra Kanungo.
We pay our tributes to legendary literary giant Gurudev Rabindranath Tagore, who died on the 7th of August 1941.
A multi-talented personality in every sense, Tagore was a poet, Brahmo Samaj philosopher, playwright, novelist, painter and a composer. He modified Bengali art by rebuffing the strictures that confined it within the sphere of classical Indian forms. Apart from the Indian national anthem, Jana Gana Mana, his composition Amar Shonar Bangla was adopted as the national anthem of Bangladesh, and the national anthem of Sri Lanka was inspired by one of his works.
Amar Shonar Bangla, Ami Tumar.
Tagore vouched for Indian independence through his motivating songs. He supported Indian nationalists and publicly criticized imperialism. During the partition of Bengal in 1905, Rabindranath provided active leadership to the Swadeshi movement, advocating boycott of British goods and promotion of indigenous products. Rabindranath Tagore wrote the song Banglar Mati Banglar Jol to unite the Bengali population. In 1915, he received knighthood from the British Crown, which he later renounced, citing the massacre at Jallianwala Bagh. He said that the knighthood meant nothing to him when the British failed to even consider his fellow Indians as humans.
Rabindranath also criticized the education system that was forced upon India by the British. Reforming education became a cornerstone of his mission for society and nation building. And to this end, Gurudev Rabindranath established Vishwa Bharati University at Shantiniketan in 1921.
The noble soul breathed his last on the 7th of August 1941 at Kolkata. Rabindranath Tagore changed the way Bengali literature was viewed, and he left an everlasting impression on many. There are 5 museums dedicated to Tagore. While 3 of them are situated in India, the remaining 2 are in Bangladesh. The museums houses famous works and are visited by millions every year.
We also remember nationalist artist Abanindranath Tagore, who was born on the 7th of August 1871 in West Bengal. Nephew of Rabindranath Tagore, Abanindranath Tagore was the first major supporter of Swadeshi values in Indian art.
Abanindranath created the Indian Society of Oriental Art and Bengal School of Art to counter the English influence on Indian artists. He rejected the materialistic art of the West and emphasized on returning to the Indian traditional art forms. He believed that Indian art and its art forms gave importance to spirituality as opposed to the West, which stressed on materialism. His idea of modernizing Mughal paintings and Rajput paintings eventually gave rise to modern Indian painting. Most of his works revolved around Hindu philosophy. His notable paintings include Ganesh Janani, Bharat Mata, and the Victory of Buddha.
The great nationalist died on the 5th of December, 1951.
Well, now we're joined by our correspondent Shaurya live from Paris, and wrestler Vinesh Fogart was disqualified from the 50kg freestyle wrestling for being overweight by a few grams after she stormed into the final bout. So Shaurya, what are the latest updates?
Yeah, so that was a very shocking news to wake up to here in Paris, because Vinesh was brilliant yesterday and she romped her way to the final of the 50kg event, defeating the top seed, the world number one, on her way in the pre-quarters. And then in the morning we get to know that during the weigh-in, she was weighing over the permissible limit by about 100 grams only. And what happens is that these wrestlers, they cut to be inside the weight category during the weigh-in, because that gives them an advantage. And the official statement says that her weight had increased because she needed replenishments during these tough 3 bouts that she underwent. And her weight had increased, and they were going through a cutting throughout the night. There was sauna, there was working out, and they even took drastic measures like cutting her hair. But ultimately, 100 grams was all it took for her to be disqualified, and she won't win a medal right now. The Wrestling Federation of India, they've appealed this call, but hopes are dim. Let's see what happens. It's a big, big setback, because she was the first Indian wrestler to win to reach the final. So that was a big setback. Otherwise, India has also struggled today. Not many successes, but at night, Avinash Sable will be taking part in the steeplechase event, and Mirabai Chani in weightlifting. So let's see what happens.
Right. So what all is there for us in store, you know, to look forward to this evening?
Yeah, so as I mentioned, Mirabai Chanu, who is a Tokyo Olympics medalist, she's taking part in the weightlifting 49kg category today evening. And Avinash Sable is the first Indian to reach the final of the steeplechase, and he's taking part at night as well as Stade de France, where I'm situated right now. And but other than that, Indians have struggled today. They have been knocked out of the TT table tennis competition, the women's team. And we have also struggled in qualifying in the athletics events today.
Right, let's hope for the best, fingers crossed. Thank you so much, Shaurya, for
all the... One other thing that I should mention is that in golf, we are in medal places. Aditi Ashok is doing well. Antim Panghal has lost her bout in wrestling. That's about it.
Right, thank you so much, Shaurya, for all the information.
Thank you.
Right. Union Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya today said that the Indian Olympics Association has registered its protest to United World Wrestling in the disqualification issue of women wrestler Vinesh Phogat in the Paris Olympics. In a Suo Motu statement in Lok Sabha, Mr. Mandaviya said the centre is providing all sorts of help to the women wrestlers, and Prime Minister Narendra Modi personally called the President of IOA, P.T. Usha, over the issue.
और अब बात करते हैं उन व्यक्तित्व की जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस. तो इस क्रम में अभी हम याद कर रहे हैं सबसे पहले एमएस स्वामीनाथन को. अनुवांशिकी विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासक जो भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं. इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे. हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए थे. इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश से उबार कर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था. उस समय से भारत के कृषि पुनर्जागरण ने स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई. उनके द्वारा सदाबहार क्रांति की ओर उन्मुख अवलंबनीय कृषि की वकालत ने उन्हें खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व का नेता का दर्जा दिलाया. एमएस स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उन्हें 2024 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया.
वेल टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग एस्थर फिलिप्स. शी इज एन अमेरिकन सिंगर best known for her R&B vocals. She rose to prominence in the year 1950, scoring several major R&B hits, including Double Crossing Blues and Mistrust in Blues. So now I'll let her music speak in the way of the song Release Me.
And let me love again.
आज गुलशन बावरा की पुण्यतिथि है. वे हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे. उनका मूल नाम गुलशन कुमार मेहता था. उन्हें बावरा का उपनाम फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने दिया था. सही मायने में फिल्म उपकार के गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती ने गुलशन बावरा को भारत की जनता से जोड़ दिया. 70 की शुरुआत में सबसे पहले 1974 में फिल्म हाथ की सफाई में लता मंगेशकर द्वारा गाए गए उनके गीत तू क्या जाने बेवफा और वादा कर ले साजना बेहद लोकप्रिय रहे. फिर 1975 में आई फिल्म जंजीर में उनके गीतों दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए और यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी ने पूरे देश में धूम मचा दी. आइए सुनते हैं उनका ये गीत.
धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना.
Today we are also remembering Oliver Hardy, American comic actor and one half of Laurel and Hardy, the double act that began in the era of silent films. He appeared with his comedy partner Stan Laurel in 107 short films, feature films and cameo roles. He has appeared in films such as Stan and Ollie, Sons of the Desert, Way Out West and The Devil's Brother.
आज सुरेश वाडेकर ख्याति प्राप्त भारतीय गायक हैं. उनका जन्मदिन है. उन्होंने जिन महत्वपूर्ण फिल्मों में अपनी आवाज दी है उनमें ओमकारा प्रेम रोग राम तेरी गंगा मैली हिना रंगीला माचिस आदि शामिल हैं. सुरेश वाडेकर मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के गायक हैं और आइए सुनते हैं उनका ये गीत.
भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार. भंवरे तू कहना न भूल फूल तुझे लग जाए मेरी उम्र. भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार.
Today we're also remembering Alfredo Catalini, Italian operatic composer. He is best remembered for his operas Loreley and Lavelli. Lavelli was composed to a libretto by Luigi Illica and features Catalini's most famous aria Ebbene no andrò lontana. And we're also remembering Tom Scott, Scottish poet, editor and prose writer. His writing is closely tied to the new apocalypse, the new romantic.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.com पर।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर लिसनिंग टू अस। नमस्कार।